Ladies and gentlemen, good day and welcome to Umia Mobile Limited's Q4 FY26 earnings conference call hosted by Orim Connect. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Aanchal Jain from Orim Connect. Thank you, and over to you, Ms. Jain.
Hello, good afternoon, everyone. और सभी को warm welcome. मैं Aanchal Jain from Orim Connect, Umia Mobile Limited Investor Relations team को represent कर रही हूँ. Company की तरफ से H2 and FY26 earnings call में join करने के लिए आप सभी का धन्यवाद. अब मैं management team के members का introduction देना चाहूँगी, जो हमारे साथ मौजूद है. Mr. Kishore Bhai Jadwani, Managing Director. Mr. Piyush Dedhakia, Chief Financial Officer. आप सभी investors से निवेदन है कि question and answer session के दौरान अपने questions को हिंदी में भी पूछ सकते हैं. अब मैं Mr. Kishore Bhai Jadwani जी से उनके opening remarks के लिए invite करती हूँ. Thank you and over to you, sir.
राधे राधे, very good afternoon, everyone. Our Umia Mobile Limited H2 Financial Year 26 earnings call में आप सबका तहे दिल से स्वागत है. सबसे पहले मैं हमारे shareholder, investor, analyst, business partner का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा company पर trust और support बनाए रखा है. Financial Year 26 Umia Mobile के लिए एक important growth year रहा है. हमने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपनी market presence को और strengthen किया हुआ है. 2005 में एक small outlet से हमारी journey शुरू हुई थी. आज 400+ store के strong network के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमारी presence है. इस साल हमारा plan है Tier 2, Tier 3 market में expansion पर strong focus रखना. साथ ही customer experience, product availability और after sales and service support को भी और improve करना. जो brand के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे Google है, Apple है, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Motorola, OnePlus, ये leading brand के साथ हमारी strong partnership और हमारी growth का support basically यही brand है. तो यही brand के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले time में भी company पूरी तरह से support करने के लिए Umia Mobile को ready है. हम smartphone के साथ साथ accessories, laptop, home appliance और consumer electronic category में भी अपना portfolio diversify कर रहे हैं, जिससे customer engagement और business opportunity दोनों बढ़ाने में हमें help मिलेगी. Indian consumer electric और smartphone market में long-term growth opportunity काफी strong है, driven by rising digital adoption और demand across semi-urban and rural market. हमें पूरा विश्वास है कि Umia Mobile इस opportunity को effectively capture करने के लिए well position में है. FY26 में company का successful listing BSE SME platform पर हुआ, जो हमारे लिए एक important milestone रहा. आगे भी हम sustainable growth और governance और long-term value creation पर focus continue रखेंगे. आगे चलकर हमारा focus store network expansion करना, operational efficiency improvement करना, higher value product category और stronger brand visibility पर focus रहेगा और हम उसके ऊपर ही अपना ध्यान अभी से केंद्रित कर रहे हैं. और मेरे साथ अभी Piyush Bhai, Mr. Piyush जी मेरे साथ बैठे हैं, जो हमारे company के CFO है. Financial year के आगे के जो numbers है, उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे. धन्यवाद.
Thank you, Kishore Bhai. Good afternoon, everyone. सबसे पहले तो आप सभी को ये आपका कीमती समय निकालने के हमारे call में शामिल होने के लिए सबका धन्यवाद. मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल 26 फाइनेंशियल ऑपरेशन हाईलाइट के बारे में ब्रीफ करूंगा, जो कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किया है। फाइनेंशियल 26 के बारे में बात करें तो जो स्टोर जो हमने डिलीवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किया है उसमें स्टोर एक्सपांशन, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड, जो सब ड्राइव रहा है हमारे लिए। कंपनी का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल 26 में हमने 8084 करोड़ रहा है, जो फाइनेंशियल 25 में 600 करोड़ का था। उसके मुकाबले में हमने 47-48 पॉइंट तक वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं वहां पे। जो उसके साथ रेवेन्यू के साथ हम इबिटा भी अभी हमने ज्यादातर फोकस किया है, तो उसके बारे में बात करें तो कंपनी का इबिटा भी फाइनेंशियल 26 में 50.1 करोड़ रहा है, जबकि उसके सामने पेड भी 9.2 करोड़ तक हमने पहुंचाया है, जो कम्पेयर टू 25 में 5.5 करोड़ का जो फाइनेंशियल 25 में था उसके मुकाबले में हमने 1% तक इम्प्रूव होकर अभी किया है, जो कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैटेगरी वाइज देखे तो अभी हमने स्मार्टफोन में अभी भी हमारा लार्जेस्ट रेवेन्यू है, जो अभी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में देखे तो 96% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके साथ में अभी हमने ज्यादातर एसेसरी, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस के कैटेगरी में भी हम प्रेजेंट है, तो उसमें भी हम एक्सपांड कर रहे हैं अभी। उसके साथ हम देखे तो सर B2B बिजनेस में भी हमारा की ग्रोथ रहा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल 26 में 73% से ज्यादा हमारा रहा है। और B2B बिजनेस में B2C के साथ B2B बिजनेस में भी हमने हेल्थ ग्रोथ देखा है, जो उसमें भी हम अभी ज्यादातर B2B में भी इम्प्रूव कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हम देखे तो प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट भी हमने स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 25 में 3.77 जो इम्प्रूव होकर 26 में 1.2 रहा है। फाइनली IPO की प्रोसेस होने के बाद जो भी हमने IPO की अमाउंट आई वो हमने लोन का रीपेमेंट किया, उसकी वजह से करंट रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, 2.39 रहा है, जो स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजिशन रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा है। अभी हमने उसके साथ सपोर्ट करने में इन्वेंटरी में भी सप्लाई चेन जो हम नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें इन्वेंटरी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो भी हम ज्यादातर ज्यादा इन्वेंटरी हम बड़ा ना रखे उसके लिए भी हम देख रहे हो। अगर आगे भी हम डिसिप्लिन ग्रोथ, ऑपरेशनल इफेक्टिव हेल्थ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और सटेबल प्रोफिटेबिलिटी पर फोकस कंटिन्यू रखेंगे, वो भी हम उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ आप सभी को अपना कीमती समय निकालने के लिए हमारे कॉल में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद रहा। आप मैडम अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हो।
थैंक यू वेरी मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एनीवन हु विशेस टू आस्क क्वेश्चंस मे प्लीज प्रेस स्टार एंड वन ऑन देयर टचस्टोन फोन। इफ यू विश टू विथड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन क्यू, यू मे प्रेस स्टार एंड टू। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूज ओनली हैंडसेट व्हाइल आस्किंग अ क्वेश्चन। Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Please press star and one to ask questions. The first question is from the line of Dilpesh Vaghela from Credent Asset Management. Please go ahead.
Hello, sir. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, आपको आवाज आ रही है मेरी?
यस यस बिल्कुल आ रही है सर।
यस मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो पहला तो मुझे ये समझना था सर कि अब ये जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब बहुत बढ़ गया है, जैसे अमेजोन और वो सब पे लोग ज्यादा शॉप करते हैं फोन और वो सब ज्यादा वहां से ही खरीदते हैं, ये जो ऑफलाइन स्टोर जो हमारे है रिटेल स्टोर, उस पर आपका लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है और अपनी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसको उससे कम्पीट करने के लिए सर?
सर ऑनलाइन जो मार्केट है अभी जो रिसेंटली चल रहा है, कंज्यूमर को ऑनलाइन खरीदना नहीं है, लेकिन अभी हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें कंपनी की भी कस्टमर की भी कहीं ना कहीं है ना मजबूरी है ऑनलाइन जाना, क्योंकि अब बड़े सेंटर में तो स्टोर बड़े स्टोर भी है और ट्रैफिक का समस्या उसके हिसाब से वो ऑनलाइन खरीद, लेकिन टायर टू और टायर थ्री सिटी जो मेजर डेवलपिंग में है अभी इंडियन मार्केट के अंदर, तो वहां पे है ना कंज्यूमर को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है और जो स्टोर है वहां पे तो वहां पूरी रेंज उसको नहीं दिखाई देती है या उसको जो रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा टारगेट ही वही है कि हम टायर टू और टायर थ्री सिटी में अपना एक्सपेंशन और बढ़ाएं और कंज्यूमर को जो रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफिल कर पाए। जितना ई कॉमर्स के पास मोबाइल कैटेगरी है उतना ही उमिया मोबाइल के पास मोबाइल कैटेगरी और एक्सेसरीज की रेंज है पूरी वहां पे। तो एक तरीका हमारे पास वो है कि हम फटाफट जितना फास्ट ग्रोइंग टायर टू और टायर थ्री सिटी में कर पाए वो हमारे लिए बेटर होगा, कंपनी के लिए और सबके लिए भी। और कस्टमर को टच एंड फील चाहिए जो ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। अब मजबूरी है, दुकान ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है वहां पे कोई, तो वो टच एंड फील भी नहीं कर पाएगा। एक बजट देख के वो देख लेता है कि चलो ऑनलाइन में मुझे मिल जाता है। और अगेन हम जहां भी हैं ऑनलाइन और एज ए उमिया का अभी प्राइस वेरिएशन उतना नहीं आता है जितना पहले आता था, पहले के टाइम पे ऑनलाइन पे था। अभी ऑनलाइन और उमिया प्राइस सिमिलर है, आइदर उमिया का प्राइस ऑनलाइन से फार बेटर है, नीचे आ रहा है आज की तारीख में। कंपनी भी हमें सपोर्ट कर रही है रिटेल बढ़ाने में, जो पहले कम स्टोर थे और हमारा भी ग्राफ छोटा था तो वो नहीं कर रही है। आज की तारीख में सारे ब्रांड हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो एक ये है कि हम ऑनलाइन से भी बीट कर पा रहे हैं और उसका ही रिजल्ट है सर, जो आईपीओ आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट आया उसी से हमने स्टोर बढ़ाए और अच्छी अच्छा सपोर्ट मिला हमें।
अच्छा लगा सही सुन के। बट सर मुझे ये समझना था कि फिर ऑनलाइन से हमारी प्राइस कैसे बेटर है, मतलब हम इसे क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन से भी ज्यादा बेटर प्राइस में प्रोवाइड कर पा रहे फोन।
सर जनरली है ना, कंपनी जो जितने भी मोबाइल ब्रांड है वो जो भी ऑफर ऑनलाइन में होती है ना वो ऑफर ऑफलाइन मॉडल में भी सेम मॉडल के ऊपर देती है। अभी रिसेंटली सैमसंग का कोई मॉडल पकड़ लो S25 Ultra, उसका जो ऑनलाइन रेट है वही रेट हमारा है, लेकिन कंपनी हमें एडिशनल स्कीम भी देती है कि भाई मार्केट में आपको ज्यादा बेचना हो या ज्यादा कंज्यूमर को एंगेजमेंट करना, इसलिए आपको हम एडिशनल स्कीम भी देती है ऑफलाइन को बढ़ाने के लिए। तो अभी कंपनी हमें प्राइस मैच करके दे रही है क्योंकि हमारा टर्नओवर इतना बड़ा हो गया तो कंपनी के साथ डायरेक्ट हमारा टाइप है, तो कंपनी कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट करती है सर। तो प्राइस में कोई चैलेंज अभी पहले की तरह नहीं आएगा ऑनलाइन ऑफलाइन में। हाँ, एक दिवाली का टाइम रहता है, जो फेस्टिवल टाइम रहता है उसमें सम एक आध दो मॉडल में उसका एक्सक्लूसिव टाइप रहता है, कंपनी से कोई एक मॉडल उठा लेते हैं वो, जो कंपनी को भी वो स्टॉक लिक्विडेशन करना है तो वो टाइम पे वो चैलेंज आती है, लेकिन वो एक और दो दिन के लिए रहती है, उससे ज्यादा वो चैलेंज नहीं रहती है सर। बाकी प्राइस मैच हो गए अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन में सर, और हम कंज्यूमर को ऑफर्स भी देते हैं साथ में। ऑनलाइन प्राइस मैच के साथ उसको बेटर ऑफर मिलेगा, एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा हमारे स्टोर पे, बाय बैक ऑफर है हमारे यहाँ। तो जितनी ऑफर हम दे पा रहे हैं आज की तारीख में उतना ऑनलाइन नहीं दे पा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टच एंड फील, जो ऑनलाइन नहीं मिलता है सर वो आने के बाद ही आता है। अब उसमें फ्रॉड के केस इतने बढ़ गए हैं तो कस्टमर भी अभी चाहता है कि मैं ऑफलाइन से ही खरीदूं पहले, भले मुझे ऑनलाइन के साथ प्राइस मैच नहीं हो रहा है ना तो भी कंज्यूमर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है कि मैं ऑफलाइन से ही फोन खरीदूं, क्योंकि वो लाइव फील करके ले रहा है और साथ में बेटर ऑप्शन मिल रही है। हम भी सर उसको बाकी अच्छी ऑफर देने के लिए फाइनेंस के साथ अफोर्डेबिलिटी जो होती है कार्ड में भी एश्योर कैश बैक देना, ईएमआई कर देना, मतलब वो बैंक के साथ हम भी टाई अप करते हैं और कंटिन्यूटी कंज्यूमर को ये ऑफर भी प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, और सर दूसरा मुझे ये समझना था कि अभी जो B2B सेगमेंट है अपना, उसमें आप लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रोथ देखते हो, आपका क्या व्यू है उसके ऊपर, क्योंकि अपना जो B2B कॉन्ट्रीब्यूशन है अभी पास्ट कुछ ईयर से बढ़ रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हो अभी?
देखो तो सर, इंडस्ट्री जितने इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ेगी ना, B2B का बिजनेस वो डेफिनेटली बढ़ने वाला ही है, क्योंकि हर फेस्टिवल पे या हर कोई टारगेट पे अभी कंपनी भी यही चलाती है कि भाई आप हमारा इतना सामान खरीदो तो हम आपको फोन, ये ब्रांड का फोन आपको ये टारगेट होने पे देंगे। तो B2B में अभी इंडस्ट्रीज में ये काफी हद तक ये बढ़ गया है, छोटे से लेके बड़े तक। तो वो सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो जो ये ब्रांड ऐसा कर रहे हैं उसको टारगेट करके हमारी एक इसके लिए अलग टीम बनाई है, वो यहाँ पीस करके सारे मॉडल बोडल का वो बताते हैं वहां पे।
अच्छा, तो ये जो B2B से हम कितना कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी जो अपना 26-27% रेवेन्यू आता है B2B से, तो नेक्स्ट 2-3 साल में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसका?
ये 35% तक ये पहुंच सकता है सर
नेक्स्ट 3 साल में।
हाँ
अच्छा, और दूसरा मुझे ये जानना था कि तो वैसे तो हमको पता ही है कि अपना रिटेल में जो है मार्जिन थोड़े कम होते हैं, बट अपने मार्जिन जो इतने हैं अभी उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ है अपनी स्ट्रैटेजी अभी मीडियम टर्म के लिए?
हाँ सर, हम भी देखो सर, पहले तो क्या था कि एक कंपनी थी तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करना था, तो वहाँ पे एक्सपेंशन और वहाँ पे खर्चा एक ओपेक्स अपने ज्यादा लगते थे। अब वो सब प्लेटफॉर्म रेडी है, अब बस स्टोर बढ़ाने और बिजनेस करना है, तो वो एक्सपेंशन के अब तो वो खर्चा लगने वाला नहीं है हमें, या ओपेक्स वो लगने वाला नहीं है। तो एक ये रीजन है कि एक प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है, अब उसके ऊपर हमें ओपेक्स कुछ अलग से डालना नहीं है। दूसरा कि हम डे बाई डे अपने स्टोर पे जो प्रोडक्ट है उसके साथ कॉम्बो ऑफर भी कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट भी बिक रही है, तो उसमें से सम मार्जिन हमें रिटर्न हो। दूसरा कंपनी के साथ अब हम टाइप कर रहे हैं कि भाई हम इतना स्टॉक आपसे उठाएंगे, क्योंकि अपनी एज ए उमिया की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी वो 0.5% से लेकर 1% तक वो हमें सपोर्ट करती है एक क्वांटिटी बेस पे। तो मार्जिन बढ़ाने का मेजर ये 3 तरीका है सर, और जहां हम काम भी कर रहे हैं और वहां हम सक्सेस भी हैं आज की तारीख में सर।
अच्छा, तो फिर लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में हम क्या मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो अपना जो 1.8-1.9 के करीब मार्जिन आते हैं EBITDA मार्जिन, तो फिर हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने पॉइंट से बढ़ सकते हैं ये?
3% तक सर बढ़ सकते हैं सर।
अच्छा, और क्या टाइमलाइन होगी इसकी, मतलब कितने टाइम तक हम ये पहुंचेंगे 3% तक?
करीबन सर आप 2 साल पकड़ लो, 28 पकड़ लो सर।
ओके okay. सर आप ये जो अभी क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स का और कॉम्बो का बता रहे थे कि आप टाइप करते हो, तो मुझे ये समझना था कि ये जो आप टाइप्स करते हो दूसरे ब्रांड क्रेडिट कार्ड ब्रांड्स के साथ और उसके साथ, और आप EMI स्कीम्स देते हो, तो उससे जो है कैसे सेल्स ग्रो करती है, उसका मतलब क्या इम्पैक्ट होता है अपने सेल्स पे, और खास करके जो फेस्टिव सीजन होते हैं वो टाइम पे?
सर आज के तारीख में रिटेल में है ना सर, कंज्यूमर की जेब में पैसा है ना, तो भी वो EMI पे खरीदता है सर। EMI का चलन डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है इंडियन मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के जेब में पैसा और उसको EMI पे लेना है, लेकिन ज्यादातर कैशबैक की ऑफर वो EMI के ऊपर ही आ रही है। जो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस कंपनी है या कार्ड की कंपनी है, जो एफोर्डेबिलिटी हम उसको बोलते हैं, उसकी ज्यादातर कैशबैक आज 4,000-5,000 की फोन के कार्ड के ऊपर या फाइनेंस लेने पे ही आती है। तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट समझ के उस पे डाइवर्ट हो रहा है कि चलो मैं कैश क्यों दूं, मुझे इजी नॉन EMI पे फोन मिल रहा है, 5,000 या 4,000 की कैशबैक मिल रही है, तो मैं क्यों यहाँ इन्वेस्ट करूं। और कंपनी के साथ हमारा भी टाइम रहता है, जैसे कंपनी बीच में चालू ही रखती है, लेकिन एडिशनल फेस्टिवल के टाइम पे हम भी बैंक के साथ टाइप करते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। जैसे फाइनेंस में हो गया कि आप हमारे से फोन ले रहे हो तो हम आपको 1 EMI फ्री कर देंगे, जो हमारा बार्टर रहता है कंपनी फाइनेंस कंपनी के साथ। दूसरा कोई स्कीम ऐसा रन आउट कर दिया कि अभी होम थिएटर आपको ये बजाज फाइनेंस कराओगे या दूसरे कोई फाइनेंस कराओगे, उसके ऊपर होम थिएटर मिल गया, तो उससे है ना बिजनेस बढ़ता है। एक ऑफर हो गया, कंज्यूमर को एक इफेक्ट दिखता है कि चलो ये प्रोडक्ट मार्केट में भी ऑनलाइन में भी ये रेट में मिल रहा है, उमिया भी ये रेट में मिल रहा है, तो इसके साथ मुझे होम थिएटर मिल रहा है, या तो मुझे एक EMI फ्री मिल रहा है, या इसके साथ मुझे एडिशनल कैशबैक मिल रही है, जो एक्सक्लूसिव ऑफलाइन के लिए ही रहता है सर। तो उससे 100% बिजनेस डे बाई डे बढ़ता जा रहा है सर।
तो जस्ट ऐसे समझने के लिए, अगर हम एक दिन में 100 फोन बेचते हैं, तो उसमें कितने फोन हमें जो EMI पे बिकते हैं और कितने फोन फुल कैश पेमेंट पे बिकते हैं?
70% सर अभी EMI है।
अच्छा,
EMI मतलब उसमें सारा पेमेंट मोड आ गया, पेपर फाइनेंस भी आ गया, कार्ड भी आ गया, और आज की तारीख में सर UPI में भी है ना कैश बैक आना स्टार्ट हो गया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी ये बेनिफिट कंज्यूमर ले रहे हैं, तो इसका मोड ऑफ पेमेंट वाला जो सिनेरिया है वो बढ़ता ही जा रहा है डे बाई डे।
अच्छा, और जस्ट एक इंडस्ट्री लेवल पे सर मुझे समझना था कि अभी अपनी जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सब, उस पर सर आपका ऐसा नेक्स्ट 3-5 ईयर्स का क्या व्यू है, कि मतलब कैसे हो सकता है इसका आउटलुक अभी?
सर ये तो हो, देखो सर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट अभी आ रहे हैं मार्केट में है वो अब बेसिक नीड बन गई है कंज्यूमर की। अब कुछ भी नया चेंज कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो नई प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ होती है। तो फ्यूचर सर इसका ब्राइट है और जिस हद से कंज्यूमर इसको यूज कर रहे हैं तो अब इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, वैसी हालत हो गई सर। बिना मोबाइल का किसी को चलेगा नहीं अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, तो आज की तारीख में एसी के बिना किसी को नहीं चलता। इस बार सबसे हाईएस्ट एसी बिके हैं सर मार्केट में जो हीट वेव हुए अभी वो हिसाब से। और एक्सेसरी में तो आइडियली डेली कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, तो ये बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता, डे बाय डे ये ग्रो होगा, पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं है सर। ये 2-3-4-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये डे बाय डे बढ़ेगा सर।
अच्छा सर, मेरे तो सर यही सवाल है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर।
थैंक यू सर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ निकुंज मेहता फ्रॉम एडविजन, प्लीज गो अहेड। मिस्टर मेहता आई हैव अनम्यूटेड योर लाइन, प्लीज प्रोसीड।
ओके मैम। सर आपका बिजनेस इतना बढ़ रहा है लेकिन लाइक राजकोट में ऐसी आपकी मार्केटिंग नहीं देखी। आई एम फ्रॉम राजकोट और okay. आपकी इतनी मार्केटिंग नहीं देखी जितनी कॉम्पिटिटर्स या मतलब पीयर्स है आपके जो एग्रेसिवली लाइक हर जगह पे होते हैं और मतलब इतनी कॉलेजेस है, मैंने आपको वहां पे भी नहीं देखा है। लाइक वो जो स्टूडेंट्स है वो रेगुलरली चेंज करना चाहते हैं फोन, नया जिस है तो लेना चाहते होते हैं लेकिन वो चीज नहीं दिखी, तो आपका उसमें क्या व्यूज है सर, स्ट्रेटेजी आप?
देखो सर आप राजकोट से ही हो तो आपको शायद मालूम होगा सर, बंटी भाई हमारे ब्रांड इन्फ्लुएंसर है, बंटी भाई का रील डेली अपलोड होता है। और आज हम ओवर मार्केटिंग नहीं करने का रीजन है कि जितने भी अपने स्टोर है ना सर, आप शाम के टाइम पे आओ सर वो एक ओवर क्राउडेड रहता है सर, ज्यादा मार्केटिंग करने के बाद वो ओवर क्राउड को हम संभाल नहीं पाते हैं। हम अपनी स्पेस भी बड़े करते जा रहे हैं और उसके सामने अपने एरिया वाइज स्टोर भी बढ़ाते जा रहे हैं सर, तो मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है सर। लेकिन ओवर मार्केटिंग में है ना सर, एक तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाती है प्राइस को लेके। आज मुझे मार्केटिंग करना है तो कहीं ना कहीं मुझे रिलेट करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट है ये प्राइस है, तो वो कॉम्पिटिशन उसको टारगेट करके वो पकड़ता है कि चलो उमिया ये रेट में दे रहा तो मैं उससे 100 रुपए नीचे दूंगा। तो हम स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग कर रहे हैं। आप कभी भी आओ, आप एस्टोन चौक पे जा रहे हो या गोंडा रोड पे जा रहे हो, अपने जो शोरूम है वहाँ पे आपको एवरी टाइम हायर क्राउड आपको देखने को मिलेगा सर। और ये दोनों एरिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज मार्केट शेयर देखो ना तो दोनों एरिया में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अपना ही है सर। और आज की तारीख में एस्टोन चौक जो अपना स्टोर है, आप राजकोट में ही हो सर, तो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल प्रीमाइसिस में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला ये एकलौता स्टोर है एस्टोन चौक अपना, जो आज की तारीख में 14-15 करोड़ की रेवेन्यू बिजनेस वहां से कर रहा है, जो सिंगल प्रीमाइसिस में पूरे इंडिया में कोई नहीं है आज की तारीख में सर।
नहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग का तो आपका हो ही रहा है लेकिन फिजिकल मार्केट में एक इतने मतलब जो लोकेशन से वहाँ पे मतलब नहीं दिखा, इसलिए मैंने पूछा।
और देखो सर कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो रहा है, आज हम एयरपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, पहले क्या था होर्डिंग्स लगा रहे थे, न्यूज़पेपर चला रहे थे, अब उसकी इम्पैक्ट नहीं आती। वहाँ मैं अपना ओपेक्स डाल दूंगा, खर्चा कर दूंगा, वहाँ से उतना रिटर्न नहीं आता है। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दूसरा हम दूसरे स्टेट में भी बढ़ रहे हैं और दूसरे शहर में भी बढ़ रहे हैं गुजरात में भी, तो हमें एक मार्केटिंग वहां पे भी करना पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं जो एरिया सेट है वहां उसका बजट ना एक्सपेंड करके हम दूसरे एरिया में करें, उसके लिए ये डाइवर्सिफिकेशन है दूसरे शहर और दूसरे स्टेट के लिए बजट। अब यहाँ ओल्ड वेल ओल्ड सेट है तो ओवर करने का कोई मतलब नहीं है, जहां हम नया कर रहे हैं नए स्टोर कर रहे हैं तो वहां हमें अपना मार्केटिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा पूरा एक्सपेंशन वहां हम डाइवर्ट कर रहे हैं सर।
ओके सर वो तो समझ गया मैं। और आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है मतलब तो आप मतलब कोई डिविडेंड या उसके आप बारे में सोच रहे हैं कि अभी कंपनी एक्सपेंशन में ही आप मतलब इंटरेस्टेड हो?
सर अभी तो एक्सपेंशन का ही चल रहा है, एक्सपेंशन के मूड में ही है सर कंपनी, क्योंकि कंपनी को है ना सर बहुत सारे स्टेट अभी बाकी है, वहां अपनी प्रेजेंस करनी है सर। डेफिनेटली ये एक्सपेंशन हमारा जब फिनिश होगा, स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, तो सर डेफिनेटली हम डिविडेंड भी देंगे। हर चीज जो इन्वेस्टर हमारे हमारे पे भरोसा करके हमारे साथ जुड़े हैं सर, तो उसकी भी वो होगी, नीड होगी कि यार मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे भी कुछ रिटर्न मिले, तो हम बेटर रिटर्न देने के लिए ही अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं सर।
अभी तो आप गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, तो आपका कौन कौन सा स्टेट अभी पाइपलाइन में है टारगेट
अभी है ना, महाराष्ट्र में भी हमने रोम में स्टार्ट किया है, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में किया है, तो करंटली यही ईयर से हम बॉम्बे स्टार्ट कर देंगे, जो हम उसको एक स्टेट ही मानते हैं, उसका रेवेन्यू और
करना?
बिजनेस बहुत बड़ा है सर। तो हम बॉम्बे में अपना ऑपरेशन यही साल में स्टार्ट कर देंगे, और उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, तो ये तीन जगह 2026 में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा सर।
ओके एज ए इन्वेस्टर वही मतलब था कि लाइक थोड़ा शेयर पे भी दिखा है असर पिछले 5-6 सालों में, 5-6 महीनों में, तो एज ए इन्वेस्टर हमें बने रहना है कि कुछ और भी है आपके प्लान, तो एग्रेसिवली आपके ज्यादा इन्वॉल्व होना है?
सर शेयर मार्केट एक ऐसा फंडा है कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो ही आपको रिटर्न दिखेगा सर। देखो
हाँ,
सर आईपीओ आया
मतलब
सर, जस्ट रिसेंटली अभी आईपीओ आया, उसको 8-9 महीने हुए सर, तो जो फंड था हमने मार्केट में अपने एक्सपेंशन में अपने स्पीड भी बढ़ती, हमने एक्सपेंशन में लगाया, अब वहां से रेवेन्यू जनरेट अब स्टार्ट हो गया सर यही साल का। आज हमने अपना रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल किया है सर, तो लास्ट ईयर से ये साल हम बेटर है, और आने वाले समय में और बेटर होंगे सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहो सर, आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आपको मालूम है उमिया नाम एज ए लॉर्ड ऑफ माता पार्वती का नाम है, तो ये कंपनी किसी के साथ चीटिंग करने के लिए या कुछ और करने के लिए नहीं आई है, और 20 साल से हम ये इंडस्ट्रीज में है ना, एक इंडस्ट्री से भागने के लिए आए हैं, और डाउन टू अर्थ हम वर्क कर खुद सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कंपनी ग्रो होगी सर।
ओके सर, थैंक यू फॉर योर जेन्युइन आंसर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट यू मे प्लीज प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ केतन फ्रॉम पॉप्यूट प्लस, प्लीज गो अहेड।
हेलो।
यस
हेलो। हाँ किशोर भाई, अच्छा जैसे हम देख पा रहे हैं सर, आईपीओ के टाइम पे आप गुजरात में थे, उसके बाद आपने महाराष्ट्र में एक्सपांड किया है, और अब आप मध्य प्रदेश में गए हो, तो जैसे मेरे को ये जानना था कि कोई भी स्टेट आप एक्सपांड करते हो तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहती है, फॉर एग्जांपल कि ये उड़ीसा करना है जैसे आप बता रहे हो, छत्तीसगढ़ करना है, तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि क्या वॉल्यूम होगा, क्या पेट होगा, या पर स्टोर कैपिटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है सर कोई भी स्टेट के लिए आपकी?
सर हम कोई भी स्टेट में जाते हैं तो पहले हम वहाँ पे हम अपना रेकी करते हैं 1-2 महीना, वहाँ हम जानते हैं कि यहाँ का फुटफॉल क्या है, यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, और इसमें बड़े सिटी मेगा सिटी कितने हैं कि जहाँ से हमारा बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा, और टायर 2 और टायर 3 सिटी कितने हैं वहाँ पे, दूसरा वहाँ की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो स्टेट की, कि आज छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले जाता तो मैं डेफिनेटली फेल होता सर, आज छत्तीसगढ़ की फाइनेंशियल अच्छी है तब हम एंटर हो रहे हैं, तो ये देखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि वहाँ का हम जो सिटी या शहर में, सिटी या रूरल में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या मोबाइल का कंजप्शन कितना है, चाहे हमने दुकान खोल दी लेकिन कंजप्शन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो पूरा डेटा हम वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि चलो ये मार्केट अच्छा रहेगा अपने लिए, यहाँ पे कंपटीशन पार्टनर भी इतना है, हमें इतना परसेंट स्टोर मिल जाए, और वहाँ पे डेफिनेटली हम सीधा जाके लाइन से स्टोर नहीं खोलते, पहले अपना खुद का एक पोको स्टोर और अपना वेयर हाउस हम वहाँ बनाते हैं, उसे ही समझ लेते हैं कि ये स्टेट में और आगे बढ़ने जैसा है या नहीं है।
ओके। तो जैसे सर आपने इंदौर में अभी स्टार्ट किया था, तो बराबर, तो जैसे आपने उसमें इंदौर में जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल बांटी थी बराबर, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे आइडेंटिफाई करते हो और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कॉस्ट क्या होती है और कैसे वो रिकवर होती है सर?
सर जब हम इंदौर गए थे तो उसका तो पूरा डिफरेंट था, मध्य प्रदेश हमारा टारगेट था, मध्य प्रदेश न के इंदौर था, लेकिन उसका कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल में हमें उतना बाइंग पैटर्न नहीं दिखा जितना हमें इंदौर में बाइंग पैटर्न दिखा। तो बाइंग पैटर्न को हमने समझा तो जनरली इंदौर के 35 लाख के पॉपुलेशन के सामने वहां पे कोई बड़ा रिटेलर ही नहीं है आज की तारीख में, तो ये ना होने का रीजन देखा। तो ऐसा था कि भाई कोई रिटेलर पूरी रेंज नहीं रख रहा है वहां पे, और जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें कंज्यूमर में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बस अपना चल रहा है उतना चला रहे हैं। तो 35 लाख के पॉपुलेशन के सामने मेजर कस्टमर है ना ऑनलाइन बाइंग कर रहे थे वहां पे, अब 35 लाख कंज्यूमर है तो 35 लाख फोन तो यूज होते ही है सर वहां पे, तो लेकिन वो ले कहां से रहे हैं, वो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हम ऑनलाइन वाले कस्टमर को अपने स्टोर पे कैसे लेके आए, तो वो एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई कि भाई नॉर्मल कोई ओपनिंग रहता है छोटी मोटी गिफ्ट देंगे तो कंज्यूमर अपने पास नहीं आएगा, तो हमें कुछ हटके करना पड़ेगा कि हमारा एक लॉन्चिंग से पूरे इंदौर को समझ आ जाए कि नहीं उमिया का यहाँ लॉन्चिंग हुआ है, वो हाइप क्रिएट हो माउथ टू माउथ, जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड दे या सोशल मीडिया में कितना भी कर ले लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफर रखे कि जिसे हम माउथ टू माउथ पब्लिक तक कस्टमर तक पहुंच सके, तो हमने सजेस्ट किया कि अपने पास हर फोन के साथ एक एमओपी हमारा जो मार्जिन रहता है वो करीबन 10% के आसपास रहता ही है सर, 9 से 10%। कंपनी से सपोर्ट लिया थोड़ा बहुत, हमने एक मार्केटिंग का जो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल रहता है, हम कोई भी स्टोर ओपन करते हैं तो 4 से 5 लाख का अपना खर्चा आता ही है, तो वो खर्च मिला के एक बजट बनाया कि ये बजट में हमें इतनी साइकिल देनी है और इतने फोन बेचने हैं, पहले वो एक दिन में बिके या दो दिन में बिके, तो वो माउंट पब्लिसिटी से उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला और बजट में ही सेट हुआ, कुछ अलग इसमें लॉस नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ी प्राइवेसी है, आप कभी मिलोगे सर तो मैं आपको बताऊंगा ये कंपनी का फंडामेंटल है उसको कैसे सेट करते हैं।
और सर जैसे हम नया स्टोर ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उसका ब्रेक इवन कितने टाइम में आता है, मतलब जो भी खर्चा इनिशियल लेवल पे खर्चा होता ही रहेगा, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट कितने महीनों में आता है या कितने टाइम में आता है वो थोड़ा जानना है।
सर मिनिमम करीबन आप पकड़ लो 6 से 12 महीना, 300 कोई भी स्टोर को 365 दिन हम जब हम मार्केट में उतरते हैं ना कोई सिटी या शहर में तो हम 365 दिन पकड़ के ही चलते हैं, उसमें से बहुत सारे स्टोर 6 महीने में ही ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने वहाँ पे फर्नीचर नया किया है, मार्केटिंग की है, उसका एक्सपेंस लगा है, और ऐसा नहीं है ना हम जहाँ गए और जहाँ स्टोर खुला तो डे वन से मोबाइल का कस्टमर का फोन खराब हो गया या उसको आज का आज लेना, ऐसा नहीं होता, मतलब कस्टमर ने फोन लिया एक्सचेंज कराने के लिए भी आता है या नया लेने के लिए भी आता है, तो उसको मालूम पड़ता है नहीं यहाँ पे दुकान खुली है तो स्टोर खुला है तो मैं नया चेंज करना तो मैं यहाँ जाऊंगा, तो मिनिमम 6 से 12 महीना लगता है।
और सेकंड मेरे को ये जानना था सर कि अपने पास काफी रेंज की मोबाइल की वैरायटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन का ही पकड़े तो आईफोन में भी काफी सारे कलर्स है, काफी सारी अलग अलग रेंज है, जीबीज है, तो इन्वेंटरी का ओवरऑल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, काफी कम से कम इन्वेंटरी अपने पास रहे और मैक्सिमम अपना सेल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं सर?
सर पहले तो ये सब मैनेज करने के लिए तो एक ईआरपी रहता है जो ऑटोमाइजेशन पे काम करता है, पूरा ट्रैक करता है क्या सेल आ रहा है, और सिस्टम में पहले से बाय डिफॉल्ट सेट है कि स्टोर पे 20 डे का स्टॉक होना चाहिए कंपलसरी जो सेल आ रहा है उसके सामने, और वेयरहाउस पे 10 दिन का स्टॉक होना चाहिए, तो हम 28 से 30 डे का स्टॉक मैनेज करके चलते हैं, और पूरा ईआरपी है सेल के बेस पे, वो मतलब डोज बोलते हैं, तो डोज मैनेज करके ही हम स्टॉक इन्वेंट्री मैनेज करके चलते हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं आ रही है। हाँ कंपनी की सप्लाई प्रॉपर रहती है तो हम ये डोज को हम कम भी कर देते हैं, 20 डे के जगह हम 10 डे भी कर देते हैं, क्योंकि अनएक्सेसरी ज्यादा स्टॉक रखने का मतलब नहीं है, कंपनी के पास स्टॉक है और रिफिल भी हो रहा है तो 10 दिन स्टोर के लिए इनफ है कि 10 दिन में अगेन रिफिल हो रहा है आपका स्टॉक।
तो ऐसा कभी होता है सर कि अपने पास कोई स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन अभी 14 या 13 अभी कोई ले नहीं रहा है, तो अपने पास ऐसा भी कोई स्टॉक पड़ा रहता है जो ऑलमोस्ट डेड स्टॉक है या कंपनी वापस लेती है या क्या स्टेटस में होता है रिटर्न
पॉलिसी? नहीं, कंपनी वापस नहीं लेती। डेड स्टॉक हर ब्रांड में थोड़ा बहुत 1% 2% तो रहता ही है सर, आप उसको जीरो कभी नहीं कर सकते। लेकिन एज ए उमिया आप कभी देखने जाओगे तो उमिया में आपको डेड स्टॉक कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन है कि हमारी एजिंग टीम इसके ऊपर एक काम करती है। एजिंग टीम का टारगेट है कि हर महीने जो महीने का इन एजिंग बना है वो हम नेक्स्ट मंथ में उसको फिनिश कर दे। दूसरा कि कोई मॉडल बंद होने वाला है कंपनी से, हम उसको एजिंग में पहले से ही डाल देते हैं, तो वो मॉडल की नई परचेस बाइंग हम स्टॉप कर देते हैं, उसको हम परचेस करने ही नहीं देते हैं। तो उससे काफी हद तक एजिंग कंट्रोल हो रहा है और इसके लिए पूरी हमने टीम बना के रखी है। उसका काम ही है कि सिर्फ एजिंग को मैनेज करना, जिस वजह से हमें लॉस में ना बेचना पड़े या अपना इन्वेंटरी स्टॉक ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट स्टॉक ना हो। मेन तो इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टॉक हुआ तो पूरी साइकिल लटक जाएगी, तो इसके लिए तो पूरी टीम है सर जो इसको मैनेज कर दिए।
जी जी। और सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कोई स्टॉक कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रांच में कोई स्टॉक एक्सेस पड़ा है और कई जगह पे शॉर्टेज है, तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर वाला कंसेप्ट है कि परचेज का मतलब कैसे करते हो जनरली?
बिल्कुल डेफिनेटली ये करना ही पड़ता है। जितने भी स्टेट हैं और एरिया है उसमें हमारा स्टॉक सीट ओपन ही दिखती है सबको। आज वेयर हाउस में स्टॉक नहीं है या कोई पार्टनर स्टोर पे कोई कंज्यूमर आया वहां पे स्टॉक नहीं है तो उसके नियरेस्ट बाई से वो स्टॉक कहीं पड़ा है तो वो इन ट्रांजिस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। उसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता और ये रखना ही पड़ता है। ये नहीं रखेंगे तो एजिंग और बढ़ जाएगा। जहाँ कस्टमर है वो सर्व नहीं कर पाएगा और जहाँ स्टॉक पड़ा है वहाँ कस्टमर आता नहीं है, इसलिए इसको हम ओपन ही रखते हैं। गुजरात का स्टॉक भी महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र का स्टॉक भी गुजरात आता है। वो हर स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरे स्टेट को आप सपोर्ट करो और उसका स्टॉक लिक्विडेशन कराओ।
जी जी, थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट।
थैंक यू सर।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ रमेश बिनारिया फ्रॉम बिनारिया इन्वेस्टमेंट, प्लीज गो अहेड।
हेलो
सर, प्लीज यूज योर हैंडसेट।
आवाज आ
रही है सर? बिल्कुल सर,
आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है तो हैंडसेट यूज कीजिए आप।
हेलो,
अब आ रही है आवाज?
यस
बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो सर हमने आईपीओ के बाद कितने स्टोर्स ऐड किए हैं इन टोटल?
आईपीओ के बाद 100+ स्टोर सर अपने ऐड हुए हैं सर।
और सर इसमें आपके जैसे कि दो मॉडल है, फोको और पोको?
यस, ओन स्टोर एंड रिटेल स्टोर सर।
हाँ, तो उसमें कितने मतलब मॉडल, वो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास अभी?
हाँ सर, अपना रिटेल स्टोर है वो गुजरात में 186 है और ऑन स्टोर अपने 25 है। महाराष्ट्र में 129 अपने रिटेल स्टोर है, ओन 3 स्टोर है। मध्य प्रदेश एमपी में 54 रिटेल स्टोर है और 2 ऑन स्टोर है। और दीव दमन जो गुजरात में है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 3 रिटेल स्टोर है।
ओके सर। और सर इसका एवरेज साइज क्या है स्टोर की?
एवरेज स्टोर साइज मतलब सेल की स्ट्रेंथ बोल रहे हो या स्टोर की साइज बोल रहे हो सर?
दोनों।
ओके, ऑन एन एवरेज 300 से 500 स्क्वायर फीट का स्टोर रहता है सर रूरल के लिए। और जो सिटी है उसमें 500 स्क्वायर फीट प्लस रहता है सर। और इसकी ऑन एन एवरेज 25 से 30 लाख आप पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज सारे स्टोर मिला के
पर मंथ।
यस।
ओके सर। एंड सर अभी नेक्स्ट लाइक 6 to 12 मंथ्स में कोई न्यू एडिशन करने वाले हम?
बिल्कुल सर, हम महाराष्ट्र में अपना बॉम्बे ऑपरेशन यही महीना यही 26 में स्टार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये दोनों स्टेट में हम अपनी प्रेजेंस कर रहे हैं सर।
ओके सर। और सर क्या हम लाइक हम एक्सपेंशन ही करेंगे कि लाइक डेट रिडक्शन करने का भी कोई प्लान है?
एक्सपेंशन ही करेंगे सर अभी तो।
ओके सर,
क्योंकि पूरा इंडिया खाली पड़ा है सर अभी तो, और अभी राइट टाइम है एक्सपेंशन करने का क्योंकि इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, छोटे पार्टनर भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और डिमांड तो उतनी ही है मार्केट के अंदर मोबाइल की या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो अभी राइट टाइम है एक्सपेंशन करने का।
ओके सर, तो सर हम सिर्फ मोबाइल में ही करेंगे कि लाइक बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी करेंगे एक्सपांड?
नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से साथ में है सर।
ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू।
वेलकम सर।
थैंक यू। Participants who wishes to ask questions may please press star and one now. We'll take the next question from the line of Ajay Mishra from Survify. Please go ahead.
Namaskar. Thank you for all the information. Mere do teen question hai. एक तो ये कि आपके जो स्टोर जस्ट आफ्टर आईपीओ एक्सपैंड हुए, जो कि 6 महीने से 1 साल होने को आए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है अभी?
सर अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हम ओपेक्स उसके निकालते होंगे, उसको सेट होने में 1 साल तो लगता ही है सर। तो अभी 6 महीने में तो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन बहुत सारे अब तक ऐसे स्टोर है कि जहां से प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग स्टार्ट हो गया है सर।
ओके ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मार्जिन एक्सपेंशन के लिए, जैसे कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ रहे हैं मेमोरी के कारण, जो बायबैक वाला है अपॉर्चुनिटी वो बढ़ेगा या इंश्योरेंस बढ़ेगा, इसके मामले में आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसा सोचा है, वैल्यू एडेड सर्विसेज?
यस सर, इसमें है ना सर, ऑलरेडी हम बायबैक तो कर ही रहे हैं, दूसरा एक कंपनी से हमें कंपनी से ही हमें रिफर्बी स्टॉक मिलता है, जो कोई फॉल्टी फोन हुआ कंपनी के सर्विस सेंटर पे गया नया फोन है तो 3 दिन में कंपनी उसको चेंज करके देती है, 24 घंटे में चेंज करके देती है, तो पूरे इंडिया का जो स्टॉक कंपनी में इकट्ठा होता है उसका कंपनी एलोकेट करती है एरिया वाइज, तो रिफर्बिश के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ये बाकी तो हम कम ही कर रहे थे, लेकिन ये चैलेंज आ रहा है अभी प्राइस चिपसेट के हिसाब से, तो हर कंज्यूमर हाई रेंज में नहीं खरीद सकता, तो हम रिफर्बिश हम कर रहे हैं और एक्सचेंज हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, कि भाई प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर को हम कैसे अट्रैक्शन करेंगे, तो हम कस्टमर को बोलेंगे आपका फोन है बायबैक आप मुझे दे दो, हम 80 बायबैक वैल्यू आपको दे रहे हैं मार्केट से और आप नया फोन लेके जाओ, तो मोटा मोटा रिफर्बिश और बायबैक इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। और नए मोबाइल में कोई ऐसी चैलेंज, इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी, चिपसेट के प्रॉब्लम के बाद भी, अभी कोई ऐसा 2% -2% वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है।
राइट ओके। और ये जो हाई एंड फोन के इंश्योरेंस होते हैं, ये आप बेच रहे हैं अभी?
यह बिल्कुल सर बेच रहे हैं, इंश्योरेंस जितनी भी ब्रांड है, ब्रांड के इंश्योरेंस आते हैं वो हम बेचते हैं सर, वो लो रेंज में भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं और हाई रेंज के फोन में भी करवा सकते हैं कस्टमर, और हमारा फोकस उसके ऊपर ही है। वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट है, हमें कहीं ना कहीं हमारा पेट बढ़ाना है या अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें इसकी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम कंज्यूमर को पीच करें।
एज ए परसेंटेज आज के दिन में कितनी है वो रेवेन्यू की, 1%, 2%, 5%, ये इंश्योरेंस और बायबैक के?
इंश्योरेंस अभी 2-3% चल रहा है सर, क्योंकि कंज्यूमर भी है ना प्रीमियम में, तो देखो सर कस्टमर तो ऐसा ही बोलता है कि चलो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो खुद बिकसोर होते हैं, तो बोला टूट जाएगा तो हम चला लेंगे, मतलब
हमारे हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज जैसे मुंबई में अटैच रेट ऑलमोस्ट 20% तक चला जाता है कोई
भी, गुजरात में ये रेशियो बहुत कम है सर परसेंटेज का, महाराष्ट्र में डेफिनेटली है और मध्य प्रदेश में थोड़ा कम आ रहा है सर।
राइट,
तो हमारा अभी पहले ये 26 में हमारा गोल है कि हम उसको 10% तक पहले लेके जाए,
क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
यस यस बिल्कुल, लेकिन कंज्यूमर का माइंडसेट है सर, आज मैं बहुत पीच करूंगा ना कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर निकल जाएगा कुछ भी बानाबाजी करके कि चलो मैं बाद में आता हूँ या मेरे फैमिली को लेके आता हूँ, तो वो नहीं लॉस करना है इसलिए। तो धीरे धीरे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और 26 तक हम 10% तक तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे सर।
थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही है, सेल्स टीम बड़ी होती जा रही है, नए ज्योग्राफी दूर दूर के एरिया में आप खोल रहे हैं, तो आपकी बैकएंड की टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कैसी है? जैसे कि अभी भी सेल्स टीम व्हाट्सएप में करती है कि आपने इंटरनल कुछ कंट्रोल के लिए ऐप या ये सब इन्वेस्टमेंट किया है?
सर एक तो सेंट्रली ईआरपी रहती है, बाकी हमारा खुद की एप्लीकेशन रहती है सर, उसमें पूरे दिन टीम को काम करना है या तो मेल में काम करना है, व्हाट्सएप वाला या ओरल कम्युनिकेशन हम कुछ नहीं चलाते, और जिस स्टेट में जाते हैं तो हम पूरा अपना एक पहले स्टोर वेयर हाउस और एक टीम वो पहले हम खड़ी करते हैं सर, बाद में हम मार्केट में निकलते हैं दूसरा स्टोर करने के लिए और रिटेल स्टोर को जोड़ने के लिए।
बिकॉज इंटरनल कंट्रोल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि
यस बिल्कुल सर, उसके बिना पॉसिबल नहीं सर। अभी पावर बीआई हम यूज कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग के लिए, और कुछ भी चैलेंज आ रही है तो उसमें मैसेज आ जाता है कि भाई हमें ये क्यों कह रही है, आप हमें इसका सोल्व करके दो, तो वो ऑनलाइन में ही उसका सोल्यूशन होता है सर। उसके लिए बकाया हमने कंपनी के लिए और टीम के लिए एक एप्लीकेशन बना के रखी,
क्योंकि हमने देखा आपकी जो वेबसाइट है उसमें अपडेट मेरे को मिल नहीं रहा। अभी जैसे आप बता रहे नंबर ऑफ स्टोर्स, आज भी आपकी वेबसाइट में एक साल पुराना नंबर लिखा हुआ है।
उसमें रह गया होगा सर, और टीम बीच में एक चेंज हुई थी तो ये महीने में ही वो हो जाएगा सर।
थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट नेक्स्ट 18-24 मंथ्स में क्या रहेगी, क्या प्लानिंग है? जैसे आपकी एक्सपेंशन काफी अग्रेसिव है, दूर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में इंडिविजुअल पर स्टोर कॉस्ट तो कम रहे लेकिन नंबर ऑफ स्टोर्स आप काफी बोल रहे हैं, तो आपकी क्या कैपेक्स प्लान है और उस अगर कुछ फंड रेज का प्लान है क्या?
नहीं सर, जो अभी हम इंटरनली हम इसको मैनेज करेंगे, अभी कोई प्लान नहीं है बाहर से कोई फोन लेने का या कुछ करने का, और इंटरनल जो हो रहा है उसमें से हम जो स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं या जो हमारी दौड़ने की स्पीड है हम वो हिसाब से ही अपना प्लान बना के चला रहे हैं कि इंटरनली हो जाए।
राइट। नहीं जैसे अगर आप 100 से 150 स्टोर और एड करते हैं नेक्स्ट 12 से 18 महीने में तो कैपेक्स रिक्वायरमेंट विल बी सिग्निफिकेंट, राइट?
सर अभी तो फिलहाल फिलहाल तो अभी इसी में करेंगे, नेक्स्ट ईयर कुछ इसके देखेंगे कि क्या है, बाकी बैंक भी सपोर्ट तो करती है सर, अभी लिस्टेड हो गए हैं तो सामने से अप्रोच भी करती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके। लास्ट क्वेश्चन, आपका प्लान है मेन बोर्ड में जाने का, क्या उसका क्या टारगेट है?
बिल्कुल सर, मेन बोर्ड में जाने के लिए ही हम एसएमई में लिस्टेड हुए हैं सर, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तब भी हम पूरा इंडिया कवर कर पाएंगे सर।
क्या टारगेट है आप लोग को, कब तक आप मेन बोर्ड में जाने की इच्छा रखते हैं?
3 साल के बाद सर, अभी तो एसएमई में है तो 3 साल तो यहाँ लोकेट है सर, तो 3 साल के बाद ही वो पॉसिबल है हमारे लिए, तो हम उसके ऊपर ही अपना प्लान और प्रोजेक्शन बना के चल रहे हैं कि भाई हमें मेन बोर्ड में जाना है तो हमें इतनी स्पीड से दौड़ना ही पड़ेगा सर, ये स्पीड उसी के लिए मेन बोर्ड के लिए सर। हम अपनी टीम भी बढ़ा रहे हैं अपना डेवलपिंग करने के लिए और अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं सर।
मेरा लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप जब इन्वेस्टर कॉल करें अगर उसके पहले हमें प्रेजेंटेशन मिल जाए या जो फाइनेंशियल डेटा मिल जाए तो हम लोग और कंस्ट्रक्टिव वे में सजेस्ट और क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ सर, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा सर, मैं टीम को बोल के आपको करवा दूंगा सर।
थैंक यू सो मच
Thank you, sir.
Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I now hand the conference over to Ms. Achal Jain for closing comments. Thank you and over to you, ma'am.
Hello. Thank you so much, everybody, for joining this call. And if anybody has any more questions and anything, you can also reach out to letsconnect@orim.in. Thank you and have a great day, everyone. Thank you, management, as well.
Thank you.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, members of the management. On behalf of Orim Connect, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines. Thank you.